नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर बात करने वाले हैं, जीवन देवता की साधना आराधना।
जी,
ये पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। ये 1988 से 90 के दौरान जो उनकी क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला आई थी, उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हाँ, और ये वो पुस्तक माला है जिसे पूज्य गुरुदेव ने, जैसा आपने कहा, अपना ज्ञान शरीर माना था। मतलब उनका कहना था कि ये ज्ञान हमेशा जीवित रहेगा और इसे लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, तो आज कोशिश करते हैं इसी ज्ञान शरीर के एक अंग, इस पुस्तक के जो मूल विचार है, उनको थोड़ा समझने की। और इसका जो केंद्रीय विचार है, वो ही अपने आप में मुझे तो काफी क्रांतिकारी लगा कि जीवन को ही देवता मान लो।
सही कहा आपने। ये जो पारंपरिक पूजा पाठ की धारणा है ना, उससे एकदम अलग है। इसमें बाहरी कर्म कांडों पर जोर नहीं है, जोर है सीधे व्यक्तित्व के परिष्कार पर। मतलब अपने आप को बेहतर बनाना, अपने जीवन को ही साधना का केंद्र बना देना।
तो ये जो बात है कि ईश्वर को भेंट पूजा या सिर्फ तारीफें करने से मतलब नहीं है, बल्कि वो तब प्रसन्न होता है जब हम अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनालिटी में आदर्शवाद लाते हैं। ये तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे इस हाथ दे उस हाथ ले वाला सिद्धांत, पर ये जीवन पर लागू हो रहा है।
हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो दिव्य कृपा है वो कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, वो आपके अंदर की शुद्धि का एक स्वाभाविक नतीजा है, एक तरह का फीडबैक लूप है। आप अच्छे गुण अपनाइए, कृपा अपने आप मिलेगी।
अच्छा,
जो साधना से सिद्धि का सिद्धांत है ना, वो यहाँ जीवन पर ही लागू होता है। परमात्मा को कहीं बाहर मंदिरों में या तीर्थों में ढूंढने के बजाय उसे अपने अंदर खोजना है, अपने जीवन में। असल में तो जो परिष्कृत आत्मा है, जो सुधरी हुई आत्मा है, वही परमात्मा का अंश है। और आत्म परिष्कार यानी खुद को सुधारना, वही सच्ची साधना है। जैसे वो कस्तूरी मृग वाली बात है ना, अपनी कस्तूरी को जंगल भर में खोजता फिरता है।
हाँ, वैसे।
अच्छा, पुस्तक में साधना के तीन आयाम भी बताए हैं, उपासना, साधना और आराधना। ये सुनने में थोड़े एक जैसे लगते हैं, इनमें कुछ खास अंतर है क्या?
हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, उपासना का मतलब है ईश्वर के या जो भी हमारे आदर्श हैं उनके करीब बैठना, यानी उत्कृष्टता का, दिव्यता का चिंतन करना, उनसे एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना। ये मन और भावों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है।
ठीक है, तो उपासना हो गई एक तरह की मानसिक और भावनात्मक तैयारी। फिर साधना क्या है?
साधना है असली काम, यानी चरित्र निर्माण, जीवन साधना। इसमें आता है आत्मसंयम, अनुशासन, अपने रहन सहन, खान पान को ठीक करना, अपने कर्तव्यों को निभाना, अच्छी आदतें डालना, और जो बुरी आदतें हैं, गलत प्रवृत्तियां हैं, उनको छोड़ना। ये एक तरह से खुद को गढ़ने की, तराशने की क्रिया है।
समझ गई। और तीसरा, आराधना। अगर उपासना मानसिक है और साधना व्यक्तिगत चरित्र निर्माण, तो आराधना क्या हुई? आराधना है उस सुधरे हुए चरित्र का बाहर दिखना, समाज में उसका उपयोग, यानी सेवा, पुण्य परमार्थ के काम, लोक मंगल के कार्य। और ये सिर्फ इंसानों की सेवा नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि की सेवा, जिसे पूज्य गुरुदेव ने विराट ब्रह्म का साकार रूप माना है। तो ये तीनों, उपासना, साधना और आराधना, मिलकर ही जीवन साधना को पूरा करते हैं।
ये रास्ता तो सुनने में बहुत स्पष्ट लग रहा है, पर फिर भी लोग अक्सर इस पर चल क्यों नहीं पाते? मतलब मुख्य रुकावटें क्या आती हैं?
पूज्य गुरुदेव ने तीन मुख्य बाधाओं की बात की है, जिन्हें भव बंधन भी कहा है, लोभ, मोह और अहंकार। यही तीन चीजें हैं जो इंसान को नीचे खींचती हैं।
अच्छा।
लोभ यानी ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती, जिसके लिए लोग गलत रास्ते भी अपना लेते हैं। मोह का मतलब है अपनेपन के दायरे को बहुत छोटा रखना, बस मैं, मेरा परिवार, समाज या दूसरों से कोई मतलब नहीं। और अहंकार यानी घमंड, दिखावा, फिजूल खर्ची, दूसरों को छोटा समझना, ये सब।
इनसे मुक्त हुए बिना तो फिर आत्मिक उन्नति मुश्किल ही लगती है। तो पुस्तक इनसे निकलने का क्या रास्ता बताती है?
रास्ता बिल्कुल सीधा बताया है, सादा जीवन, उच्च विचार, अपनी जरूरतें कम रखो, एक औसत नागरिक की तरह जीने में संतोष पाना सीखो। दूसरा, आत्मीयता का विस्तार करो, अपनेपन के भाव को परिवार से आगे बढ़ाकर समाज तक, दुनिया तक ले जाओ। और तीसरा, निरअहंकारिता यानी विनम्र बनो। इन बंधनों से जब तक छूटेंगे नहीं, साधना आगे बढ़ेगी नहीं।
पुस्तक में कुछ व्यवहारिक साधना पद्धतियों का भी जिक्र है, जैसे प्रज्ञा योग। इसमें आत्मबोध, तत्वबोध, भजन, मनन जैसी चीजें आती हैं। ये क्या है, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे?
हाँ, ये रोजमर्रा के अभ्यास के लिए हैं। आत्मबोध मतलब हर सुबह ये सोचना कि आज का दिन एक नया जीवन है और इसका सबसे अच्छा उपयोग करना है। तत्वबोध है रात को सोने से पहले दिन भर के कामों का विश्लेषण करना और मृत्यु की सच्चाई को याद करना, ताकि जीवन की कीमत समझ आए, लापरवाही ना हो।
अच्छा।
भजन है अपने इष्ट का ध्यान और जप, जिससे मन को शक्ति मिले, और मनन है आत्मनिरीक्षण, अपनी इंद्रियों पर, समय पर, पैसे पर और विचारों पर कितना संयम है ये जांचना और सुधार करना। और इसके साथ ही साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन चार स्तंभों पर भी बहुत जोर दिया गया है।
तो ये सब एक तरह से आत्म परिष्कार के प्रैक्टिकल टूल्स हो गए।
बिल्कुल। लेकिन एक बात और, आज के समय के हिसाब से पूज्य गुरुदेव ज्ञान यज्ञ को सबसे ऊंची आराधना मानते थे।
ज्ञान यज्ञ, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है अच्छे विचारों का, सही ज्ञान का, अच्छी प्रवृत्तियों का समाज में फैलाना, क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्ति और समाज के पतन का मूल कारण गलत सोच ही है। इसलिए विचारों में क्रांति लाना यही सबसे बड़ी सेवा है, और इसके लिए सस्ता, आसानी से मिलने वाला, विचारों को बदलने वाला साहित्य फैलाना एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है।
तो अगर हम सार निकालें तो जीवन देवता की साधना आराधना का निचोड़ यही है कि हमारा अपना जीवन यही वो देवता है जिसकी हमें उपासना करनी है, साधना करनी है और आराधना करनी है। कैसे? अपने विचारों को, अपने चरित्र को और अपने व्यवहार को लगातार बेहतर बनाकर।
एकदम सही कहा आपने। ये खुद को जानने की, अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाने की एक लगातार चलने वाली यात्रा है। आत्म सुधार यानी खुद को बेहतर बनाना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है, और इसका फल जरूर मिलता है, आत्मसंतोष के रूप में, समाज में सम्मान के रूप में और ईश्वरीय कृपा के रूप में।
इस पूरी बातचीत के बाद अब ये सोचने वाली बात रह जाती है कि ये जो इतनी बड़ी जीवन साधना है, इसका कौन सा एक छोटा सा हिस्सा, कौन सा एक छोटा सा संकल्प हम आज से ही, अभी से ही अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने की शुरुआत कर सकते हैं।